जो खेती होती है वहां पे पूरा देखते हैं प्रभु जी। और आज का उनका जो सुंदर विषय है जिसका नाम है साधु संघ, तो हमारे जीवन में साधु संघ कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में प्रभु जी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो कृपया करके आप जो खड़े हैं यहाँ पे आ जाइए, इधर आके बैठिए यहाँ पे। सबको इसके पश्चात प्रसादम का कूपन भी दिया जाएगा, तो वो कूपन लेके आप दोपहर का प्रसाद भी पा सकते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे तो यहाँ पे अभी प्रभु जी से विनती करता हूँ कि वो चालू करे अपना कीर्तन।
हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 राधा वृंदावन बिहारी राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल
श्री नाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो आप सबका हम यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी मंदिर में इस रविवार संडे फिस्ट कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम यहाँ पर इस संडे फिस्ट के उपलक्ष में साधु संग इस विषय पर कुछ कथा करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में श्लोक आता है जिसे मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और उसके तत्पश्चात हम मनुष्य जीवन में एक साधु के संग की कितनी आवश्यकता है, विशेष करके सत्संग जो हमारे जीवन में आवश्यक है और जो जीवन में हमारे कुछ परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाए और असत्संग या बुरे संग के कारण हम किस प्रकार जीवन में बह जाते हैं और अंत में वास्तविक में साधु संग क्या है, इसके ऊपर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम से इस श्लोक हम यहाँ पर बताएंगे। सुंदर श्लोक है, सतम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादश्वापवर्गवर्त्मणि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। तो इस श्लोक में कहा गया है कि शुद्ध भक्त के संग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं को श्रवण तथा कथन करने से हमारे कर्ण तथा हृदय प्रसन्न हो जाते हैं और इस प्रकार से भगवान का ज्ञान विकसित करने से क्रमशः हमारे मुक्ति का मार्ग प्रगत होता है और हम भौतिकता से मुक्त होकर भगवान के ऊपर अपना ध्यान स्थिर कर पाते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत में बताया गया है जिसके अंदर भगवान के बारे में सुनने से किस प्रकार हमारे जीवन में बदलाव आता है इसके बारे में इस श्लोक में बताया है। और विशेष करके यह जो भगवान की कथा है जब शुद्ध भक्त के द्वारा हम सुनते हैं तो यह बदलाव बहुत आसानी से हो पाता है। तो क्या आवश्यकता है एक साधु के संग की, क्या आवश्यकता एक शुद्ध भक्त के द्वारा सुनने की, तो इसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करते जाएंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर आई विल टेल यू हु यू आर, कि कहा जाता है आप बताइए आपके दोस्त कौन हैं उससे हम बताते हैं आप कौन हैं। तो कहने का अर्थ होता है कि आप जिस व्यक्ति के संग में रहते हैं या आपके कौन दोस्त है जिसके साथ आप व्यवहार वार्तालाप कार्य करते हैं उसके अनुसार अपने आप सारे गुण जो हैं हमारे अंदर भी विकसित होते रहते हैं। मराठी में भी कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग, हिंदी में, और मराठी में लोग कहते हैं कि आप जो है आपके संग नहीं तो रंग रंगण रंगण संग लागेल, दोस्त के साथ जब रहते हैं तो उसका रूप आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसका स्वभाव जो अपने आप आपके अंदर आएगा। तो जिस व्यक्ति के साथ हम रहते हैं उसके गुण जो है अपने आप हमें प्राप्त होते रहते हैं। स्वामी प्रभुपाद जो हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, वो भी एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक लोहार है, अपने लोहे को गर्म करने के लिए जब भाता गर्म करता है, लोहा तो दिखने में भी काला है और स्वभाव से भी बहुत सुस्त है, बहुत कठिन है, परंतु जब भी यह लोहा उस भाते के साथ जब गर्मी निकलती है भाते से और वो लोहे के संपर्क में, कोयले के संपर्क में आता है, अग्नि के संपर्क में जब आता है, तो धीरे धीरे ये लोहा जो इतना कठिन है वो सॉफ्ट होते जाता है, गर्म होता है, तेजस्वी बनता है और उस ज्वाले का सारा स्वभाव, कोयले का सारा स्वभाव उस लोहे में आ जाता है। क्योंकि कोयला गर्म है, उसमें जो है रंग भी है, तो वो सारे गुण जो है इस लोहे में भी समय के साथ आते हैं, क्यों लोहा भी लाल रंग का बन जाता है, उसमें भी वो गर्मी आ जाती है और वो नरम बनते जाता है। तो जितना समय उस लोहे कोयले के संपर्क में वो लोहा है, उतने समय वो सारे गुण उसमें आ जाते हैं। जैसे ही वहाँ से उस लोहे को आप निकाल दें, फिर से वो लोहा जो है कठिन हो जाता है, उसका जो लाल रंग है फिर से काला हो जाता है और फिर से वो एकदम कड़क होकर उसके अंदर की उष्णता है वो भी ठंडी हो जाती है। तो जब तक वो कोयले के संपर्क में है तब तक उसमें वो सारे गुण हैं, जैसे ही संपर्क से निकल जाता है सारे गुण बदल जाते हैं, फिर से वही स्वरूप में आता है जो उसका जो कठिन और काला सा रंग है उस स्वभाव में वो चला जाता है। कहने का अर्थ तात्पर्य यह है कि जितना तप्त संग में हम रहेंगे तब तक उसको हम प्राप्त करते रहेंगे, जितना हम उस संग से दूर जाएंगे उतना उसी स्वभाव को हम प्राप्त करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि हम सदैव अच्छे संग में रहेंगे तभी हमें अच्छा स्वभाव जो है प्राप्त हो सकता है। एक बार एक नदी में दो मटके थे, एक मिट्टी का मटका था और एक धातु का मटका था। तो किसी ने दोनों मटकियों को अपन नदी में बहा दिया। अब ये लोक कथा है, तो मटके कैसे बात कर रहे थे ये प्रश्न हम नहीं पूछेंगे, बस दोनों में वार्तालाप चल रहा था, दोनों मटके नदी में बह रहे हैं और जो धातु का मटका है वो मिट्टी के मटके को बोल रहा, अरे भाई क्यों भाग रहा है, इधर आ इधर आ, इतना क्यों डर रहा है मुझे। और मिट्टी वाला मटका है वो देख रहा है कि नदी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, पानी जो है इधर से उधर मुझे लेके जा रहा है, तो वो प्रयास कर रहा है इस धातु के मटके से मैं दूर चला जाऊं। धातु का मटका बोल रहा है इधर आ, दूर क्यों जा रहा है, साथ में चलते हैं। तो मिट्टी का मटका वाला भाई, प्रश्न ऐसा है, ये नदी के जो उतार चढ़ाव इतने बढ़ रहे हैं, लाटाएं इतनी आ रही हैं, उसके अंदर मैं आपके पास आऊं या आप मेरे पास आऊं, जब हम टकराएंगे तो फूटना तो मुझे है, आप तो बच्चे निकलेंगे, तो इसलिए मैं आपके पास आऊं या आप मेरे पास आऊं, जब हम एक दूसरे पे टकराएंगे तो फूटना तो मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि मैं मिट्टी का बना हूं, आप तो धातु के हैं, तो आप तो सुरक्षित ही हैं, तो इसलिए मैं दूर जाने का प्रयास कर रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य है, जब कोई व्यक्ति इस धातु की मटकी की तरह मजबूत बन जाता है तो जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए तो हम टिके रहेंगे, और जब हम मिट्टी की मटकी की तरह बन जाएंगे कुछ भी हो जाए तकलीफ उसे ही होने वाला है, संकट किसी के भी जीवन में है तकलीफ उसको ही ज्यादा होता है। तो इसलिए हमें उस धातु के मटके की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कोई भी परिस्थिति में हम उतार चढ़ाव आए तकलीफ आए हम टिके रहेंगे, कोई हम पे टकराए या हम किसी के ऊपर टकराए हमें कुछ नुकसान ना हो। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे हम उस धातु के मटके की तरह इस विश्व में जीवन में किस प्रकार से मजबूत बन जाए। तो चाणक्य जी अपने नीति शास्त्र में एक श्लोक लिखते हैं जिसके अंदर बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि गम्यते यदि मृगेन्द्र मंदिरे लभ्यते करी कपोल मौक्तिकम जाम्बुक शया गतम च प्राप्यते वत्स पुच्छ खर चर्म खंडम। तो यहाँ पर चाणक्य जी बता रहे हैं कि गम्यते यदि मृगेंद्र मंदिरे लभ्यते करी कपोल मौक्तिकम। जब कोई सिंह अपने घर में रहता है या कोई जगह पे रहता है और हम किसी प्रकार से जहाँ सिंह रहता है उसका निवास स्थान है वहाँ पर हम जब पहुँचते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है वहाँ पे? कपोल मौक्तिकम, मृगेंद्र कपोल मौक्तिकम। मृगेंद्र का यहाँ पर अर्थ होता है हाथी। तो जब सिंह का निवास स्थान है वहाँ पर हम जाएंगे तो हमें हो सकता है कि कभी हाथी के ऊपर जो पर्ल या मणि जो है हम प्राप्त कर पाए, मोती जो है प्राप्त कर पाए या हस्ती दंत प्राप्त कर पाए, क्योंकि वो हाथी का सिंह का निवास स्थान है। सिंह जब शिकार भी करेगा तो हाथी का करेगा, बड़े प्राणी का करेगा, तो उसके निवास स्थान पर कुछ मौल्यवान वस्तु प्राप्त करने की आशा रख सकते हैं। परंतु जब हम जाम्बुक श्रया गतम प्राप्यते वत्स पुच्चखर चर्म खंडम, एक लोमड़ी है उसके निवास स्थान पर हम जाएंगे तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं वहां पर? लोमड़ी कर करके क्या करेगी? कोई गाय के बछड़े को पकड़ के लाके मार के खाएगी या अधिक से अधिक थोड़ा गधा बेधा उसको निचोड़ के लाके उसको खाएगी? उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकती। तो लोमड़ी के निवास स्थान पर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा वहां पे? एक बछड़े का कुछ पूंछ का थोड़ा बहुत बाल और पूंछ मिलेगा, या गधे का कुछ चमड़ी पे बचा कुचा वही हम प्राप्त कर सकते। वहां पे मोती की आशा नहीं रखी जा सकती है। तो यहाँ पर चाणक्य जो हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई मूल्यवान जगह पर हम जाते हैं जैसे सिंह का निवास स्थान है तो वहीं पर हम कुछ मूल्यवान चीज पा सकते हैं, और एक लोमड़ी की जगह हम जाते हैं घर पर जाते हैं निवास स्थान पर जाते हैं तो वहां पे हम कुछ बाल ही पा सकते हैं, कुछ मूल्यवान चीज नहीं पा सकते। तो हमें कहाँ पर मूल्यवान चीज है वहीं पर जाने का प्रयास करना चाहिए। गलत जगह पर हम ढूंढने का अगर मूल्यवान चीज को प्रयास करेंगे तो हम फंस जाएंगे। गौरांग प्रभु जी हमारे बहुत बार बात करते हैं कि बताते रहते कि हम मंदिर में जाके भगवान मांग सकते हैं, भगवान के नाम को मांग सकते हैं, या कॉलेज स्कूल में जाके जो है पढ़ाई मांग सकते हैं, ग्रंथ मांग सकते हैं वहाँ के ग्रंथालय में बैठ के। बट मंदिर में आके हम आप बोलेंगे नहीं हमें कॉलेज के बुक्स चाहिए तो वो ठीक नहीं है, वो गलत जगह है। यहाँ पर आपको हम नाम दे सकते हैं, भक्तों का संग देख सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं, शास्त्रों का ज्ञान दे सकते हैं, तो ये चीज़ पाने के लिए जगह है। तो इस प्रकार हमें अगर अच्छी चीज़ चाहिए जीवन में कुछ बनना है तो सही जगह पर पहुंचना अत्यावश्यक है। अगर गलत जगह पहुंचते हैं तो उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में सद्गुणों को विकसित करना है तो हमें एक ऐसी ही जगह जाना चाहिए जहाँ पर इन गुणों का आश्रय स्थान हो, इन गुणों का पालन किया जाता है, यह गुण हमें उपलब्ध हो सकते हैं। गलत जगह पर जाके उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए कहा है जाता है कि हमें सत्संग में, साधु के संग में आकर अच्छे गुण जो है, अच्छी चीज जो है प्राप्त करना चाहिए, और उसके लिए साधु संग की आवश्यकता है। जब हम साधु का संग, सत्संग नहीं करते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं? तो कुछ उदाहरण हम शास्त्रों से देखेंगे और व्यवहारिक जीवन से में हम देखेंगे कि जब संग गलत हो जाता है, असत संग हो जाता है, तो किस प्रकार मनुष्य जीवन में हम बहुत गलत रास्ते पर चल बैठते हैं। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर उदाहरण शास्त्र में आते हैं। सबसे प्रथम मैं एक लोक कथा बताऊंगा जिसमें बताया है कि असत संग का परिणाम क्या होता है, और उसके तत्पश्चात श्रीमद् भागवतम से हम कुछ कथाएँ सुनेंगे जिनमें प्रमुख रूप से असत संग के परिणाम और सत्संग के परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में हम सुनेंगे। तो एक बार एक भविष्यकार जो है, जैसे हम देखते हैं अभी तो शहरों में बंबई में हम वो देख भी नहीं पाते, भविष्यकार मतलब वो तुरंत एस्ट्रोलॉजी यानी ऑनलाइन। कभी समय में लोग गांव में बाजार में रहते थे और ये भविष्य देखने वाला तोता लेके जाता था, चिट्ठी लेता था, पढ़ता था और बोलता था ये आपका भविष्य है। तो ये सारी चीज़ अभी तो देखने नहीं मिलती, फिर भी उदाहरण स्वरूप लोक कथाएं तो मैं बताता हूँ। तो एक बार एक भविष्यकार बाजार में जाता है, उसके पास दो तोते थे, एक का नाम था मोटू और एक का नाम था मिट्टू। तो तोते को मराठी में प्रेम से मिट्टू बोलते भी हैं, तो इसलिए उसने अपने तोते के नाम रखे थे, एक का मोटू और एक का मिट्टू। तो बहुत ही सदगुणी तोते थे, वो बाजार में जाता था, ये तोते जैसे वो बोलता था वो बात करते थे, लोगों का मनोरंजन करते, लोग बहुत प्रसन्न होते थे। वो चिट्ठी निकालता था, बोलता था भविष्य कुछ, उसको उस बाजार में 1000 रुपये मिल जाते थे, खुश रहता था। 4 बाजार जाता तो 4000 मिल जाते थे। परंतु एक बार वो सोचता है, अरे 4000 में आजकल तो कुछ होता नहीं, तो अपना सब घर परिवार चलाना है। वो थोड़ा सा सोच के उसको लगता है कि तोते इतने सद्गुणी है, क्यों ना मैं एक बार इसको बेच देता हूँ। और थोड़ा उसको भी अच्छा लगता कि बेच दूंगा, मान लो 10-10 हज़ार मिल जाएंगे, 20 हज़ार आ जाएंगे, तो अपना हर हफ्ते को बाजार में जाना, इतना मेहनत करना, कष्ट कम हो जाएगा। ऐसा सोच के एक बाजार में अपने तोते की नीलामी चालू कर देता है। और नीलामी चालू होती है, तोते बड़े गुणी थे, मस्त उनकी नोच दो रंगीली थी, लाल रंग भी उनका भड़क पोपटी था, और इतना मीठा बात करते थे, लोग आए पूछने लगे तो उत्तर देते थे, जो चाहे डांस करते थे, तो लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो जब नीलामी चालू हुआ तो लोगों के भी ना इतने सद्गुणी तोते, चलो ले लेते हैं। तो नीलामी में जो है रेट बढ़ते बढ़ते 20-20 हज़ार हो जाता है, तो उसको 40 हज़ार मिल जाते, वो खुश हो जाता है, चलो साल भर की व्यवस्था एक साथ हो गई। तो दोनों तोतों को बेच देता है। तो जो पहला मोटू था, एक कसाई है, उसको खरीद लेता है, सोच के इतना मीठी बात करता है, इतना सुंदर दिखता है, मेरे दुकान के सामने रहेगा तो कस्टमर को बुलाएगा तो अपना अच्छा खासा धंधा चलेगा, चलो इसको ले लेता, तो 20 हज़ार दे के वो लेके जाता है। और दूसरा जो मिट्टू था, एक टीचर, सोचता है चलो अपने पत्नी का बर्थडे कुछ गिफ्ट दे देते हैं, काफ़ी मीठी बातें करते, पत्नी खुश हो जाएगी, इतना अच्छा तोता है। तो गिफ्ट लेकर जो है अपने पत्नी को उसके बर्थडे के दिन वो गिफ्ट करता है। तो मिट्टू जो है टीचर के घर चला जाता है। कुछ समय चला जाता है, 6 महीने हो जाते हैं। इस भविष्यकार को लगता है कि चलो जाकर एक बार देख लेते अपने तोतों का क्या हुआ, पैसा तो मिल गया, अभी तो जीवन चल रहा है। फिर भी इतने साल वो तोतों के साथ रहा है, तो सोचता है कि देख लो क्या हुआ है। तो जाता है पहले कसाई के दुकान के सामने, दूर से ही प्रसन्न हो जाता है, चलो मेरा तोता बाहर ही दिखाई दे रहा है दूर से, तो अपेक्षा रखता है, इतने साल इसको बड़ा किया था, जाऊंगा तो स्वागत करेगा, इतने अच्छे गुण थे, इतना स्वभाव अच्छा था इसका। तो पास में जाता है, तोता कुछ इस व्यक्ति में रुचि नहीं दिखाता है, और उसका चेहरा पूरा पड़ा हुआ था, फिर भी यह व्यक्ति सोचता है अभी तो पहचाना करके और पास में चला जाता है, दुकान के सामने खड़ा जाता है, तो तुरंत तोता बोलना शुरू कर देता है, बोलने की आदत तो थी उसको, पहले से सिखाया हुआ था सब कुछ, तुरंत बोलता है पकड़ लो इसको। तो मालिक डर जाता है, भाई क्या हुआ इसको, इतना अच्छा खासा तो सिखाया पड़ाया था, ये तो मुझे सीधा पकड़ने को बोल रहा है। फिर थोड़ा समय जाता है, उसे लगता है कुछ तो अभी बोलेगा, अभी तक कुछ चेहरा तो इसने हंसते हुए बनाया नहीं, तो फिर से सुनाई देता है उसको, वो रस्सी और कोयता किधर है, जल्दी लेके आ जाओ, और भी डर जाता है। अरे समय हो गया, कस्टमर ज्यादा रहे, जल्दी काट दो, और भी डरने लगता है। अरे अभी तक बांधा नहीं इसको, जल्दी बोला था ना, काट दो जल्दी से। तो ये इतना डर जाता है कि भाई क्या सिखाया था, ये तो मुझे ही बांध के काटने को बोल रहा है, कस्टमर ज्यादा रहे, इसको क्या हो क्या गया। तो वहां से निकल जाता है, फिर सोचता है चलो मिट्टू की क्या हालत है, एक बार देख तो लेता हूँ, ये तो पूरा मोटू बिगड़ गया। तो वहाँ पे जैसे जाता है, वो शिक्षक के घर में प्रवेश करने से पहले वो तोता बाहर आके एकदम खुशी खुशी उसको देखता है, और अंदर उड़ते उड़ते जाता है, और वो टीचर को जाके बोलता है कि हमारे पुराने मालिक आ गए, जल्दी बाहर आओ बाहर आओ। तो ये भी प्रसन्न होता है, आवाज़ सुनाई सुनता है कि अंदर जाके बता रहे मैडम को कि पुराने मालिक आए, और मैडम को बोलता है कि हमारा बहुत इन्होंने अच्छा व्यवस्था किया था पहले से, आप थोड़ा कुछ पानी जो भी हो सकता है इनका स्वागत के लिए लेके आओ। मैडम बोलते ठीक है तुम उनको लेके आ जाओ। अंदर लेके आ जाता है, ये जो कुछ उसको श्लोक सिखाए थे स्वागत करता है, श्लोकों के रूप में उनका स्वागत करता है, गाना गाने लगता है, बहुत प्रसन्न वचन बोलता है, और वहाँ पे बैठ के उनको गुणगान करते हुए दिखाई देता है। मैडम आते उनको पानी व्यवस्था करते हैं, और वो प्रसन्न हो जाता है और पूछता है कि ऐसा आपने क्या किया, पहली बार उसके पहले तोते के पास मैं गया हो तो गाली देने लगा, मुझे ही काटने का बोल रहा है, इधर आया तो ये तो मेरा गुणगान कर रहा है, सारी व्यवस्था कर रहा है, इतनी मीठी बात कर रहा है, साथ में इतने श्लोक गाकर उसने मुझे स्वागत भी किया और प्रसन्न भी किया। तो बोलती है कि जो मैंने सीखा वही उसने किया, और पहले बारे में भी वही हुआ था, जो उसने देखा है वही वो कर रहा था। तो दोनों में अंतर क्या था? 6 महीने में पहला जो तोता था कसाई के संग में रहकर जो कुछ सुन रहा था, जो कुछ देख रहा था, उसी प्रकार के से उसका जो स्वभाव है, वर्तन है, बनते गया। और दूसरा जो तोता है एक टीचर के घर में थे, इसलिए रोज कविता, कुछ श्लोक, कुछ सुवचन सुनता था, तो उसी प्रकार उसके संस्कार बनते गए। तो 6 महीने में दो तोते जो सुसंस्कार थे एक गलत संस्कार पे चला गया और एक और अच्छे संस्कार पाकर सुधर गया। तो जिस प्रकार का संग व्यक्ति को प्राप्त होता है उसी प्रकार से व्यक्ति जो है बर्ताव करता है। तो हम शास्त्रों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण कथाएं जो श्रीमद् भागवतम में बताई गई हैं उन कथाओं को सुनने का प्रयास करेंगे कि असत संग से कितना व्यक्ति के जीवन में जो है गलत आदतें लग सकती हैं और व्यक्ति किस प्रकार एक बहुत ही निचले स्तर तक बर्ताव करता है। तो एक सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवतम में भी कि महाभारत का जो प्रसंग है, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडवों को 12 वर्ष को लिए वनवास में भेजा जा रहा था। तो जब युधिष्ठिर महाराज को पांडवों के साथ में वनवास में जाना था तो सारे जो हस्तिनापुर वासी थे वो युधिष्ठिर महाराज को आके बोलते हैं कि महाराज आप राज्य त्याग कर नियमों के अनुसार अभी वनवास जा रहे, तो हम इस राज्य में क्या करें? आप चले जाएंगे तो हमारे यहाँ पर क्या महत्व है? तो हम भी आपके साथ में चलेंगे, सारे ब्राह्मण, सारे यहाँ के जो हस्तिनापुरवासी आपके साथ चलेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज समझाते, भाई मैं तो जंगल में जा रहा हूँ, दिए वचन के अनुसार मुझे तो जाना पड़ेगा। यहाँ तो मेरे पास राज्य था तो आपकी सारी सुविधाएं मैं कर पाता था, क्योंकि राजा था तो सब कुछ देने का अधिकार मेरे पास था। जंगल में तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मैं आपको तो कुछ दे नहीं पाऊंगा, मैं खुद क्या खाऊंगा पीऊंगा कहाँ रहूंगा मुझे वही पता नहीं, तो आपकी कैसी सुविधा करूं? तो आपसे विनती, आप इधर ही रहो। लेकिन सारे ब्राह्मण बोलते, परंतु यहाँ तो दुर्योधन है, हमारी तो कुछ यहाँ पे व्यवस्था नहीं होगी। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते, जो भी हो आप यहीं पर रहिए, ये हमारा वनवास है तो हम ही उसे सहेंगे। तो वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज पांडवों के साथ सारे निकल जाते हैं। तो कुछ समय बाद अभी दुर्योधन जो है राजा बन गया, सारे उपभोग के साधन उसके सामने हैं और जो चाहे आनंद वो ले सकता है, फिर भी वो दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि वो देख रहा था मेरे पास उपभोग की सारी सुविधा तो है लेकिन दिखाऊं किसको, क्योंकि पांडव तो जंगल में चले गए, क्योंकि उपभोग करूंगा तो कम से कम पांडवों को दिखना तो चाहिए मेरे पास सारा राज्य है, सारी सुविधा है और आपके पास कुछ भी नहीं, वो तो चले गए जंगल में। जो खुशी तो उपभोग की थी परंतु देखने के लिए पांडव नहीं है तो उसमें आनंद नहीं आ रहा था उसको। तो वो सोचता है ये सारी सुविधाएं मुझे मिली है और उनको वनवास मिला है तो मुझे उनको जाके दिखाना चाहिए, देखो मेरे पास इतना राज्य है, इतनी सारी सुविधाएं, जो चाहे मैं कर सकता हूँ, तो दिखाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो एक बार वो सारी व्यवस्था को लेकर जहाँ पे पांडव जंगल में रहते थे उसी के पास में जाके सारे ऐश्वर्य को, सारे घोड़े, सारे मंत्री, सारी पर जितने भी योद्धा हैं सब दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अभी यहाँ खुश हूँ, कितना सौभाग्य मेरे पास है, ये दिखाने के लिए वो दुर्योधन जो है जंगल में चला जाता है। और जहाँ पांडव रहते थे उसी के बाजू में रह के सारा अपना वहाँ पर डाल के बैठ जाता है। दुर्भाग्यवश वो एक गंधर्व चित्रसेन की जगह थी। तो जब गंधर्व देखता है, वो तो देवलोक का व्यक्ति, बहुत शक्तिशाली है, कि हमारे क्षेत्र में ये कौन आ गया असुर, तो कुछ क्षणों में ये चित्रसेन जो है आक्रमण करता है और दुर्योधन के सारे महायोद्धा जो भी वहां पर थे सबको एक साथ जो पराभूत कर देता है और दुर्योधन को गले में रस्सी बांध कर जो खींचने लगता है। तो जब युद्ध के दौरान सारे महायोद्धा पराभूत हो जाते तो यहाँ की सेना भी इधर उधर चली जाती है और कुछ लोग वहाँ पास में पांडव थे तो उनके पास भी पहुँच जाते हैं, बताते हैं कि आपके भाई दुर्योधन को इस प्रकार गंधर्वों ने बांधा है और कुत्ते की तरह खींच के लेके जा रहे, कुछ करो। तो वहाँ पे सारे पांडव थे, युधिष्ठिर महाराज को छोड़ के बाकी सारे प्रसन्न हो गए। भीम तो बोला जो हमें करना था आपने कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, चित्रसेन ने पहले हमारा कार्य कर दिया। हम तो सोच ही रहे थे कभी तो बांध के लेके जाना है दुर्योधन को, हमारा काम आसान कर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन युधिष्ठिर थे साधु वृत्ति के थे, वो तुरंत बोले घर के अंदर जो है हम 5 पांडव हैं, वो 100 कौरव है, लेकिन घर से जब बाहर निकलते हैं तो हम 105 कुरु हैं। तो इसलिए अभी मसला घर के अंदर नहीं, घर के बाहर है तो हम सारे कुरु हैं। तो अभी दुर्योधन को बचाना हमारा कर्तव्य है। तो यह बात सुन के भीमसेन दुखी हुए, परंतु अभी बड़े भाई की आज्ञा है। तो अर्जुन और भीम चले जाते हैं गंधर्व के साथ, अर्जुन जो युद्ध कर लेते हैं, भीम थोड़ा युद्ध कर लेते हैं और तुरंत यहाँ दुर्योधन को वहाँ से छोड़ देते हैं। और दुर्योधन का गंधर्व के हाथों से जब छुट्टी होता है तो अचानक से दुर्योधन पहली बार सोचता है कि किस प्रकार से जीवन मिला है, सारा ऐश्वर्य दिखाने गया था पांडवों को और जान भी बची थी पांडवों के कारण, तो ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। बचाया तो भी भीम ने बचाया, अर्जुन ने बचाया, तो एकदम साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा सोचता है कि अभी बस आत्महत्या कर लेता हूँ, जीने की कोई इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे संगत थी साथ में, शकुनी थे और बहुत सारे योद्धा उनके बाजू में, कर्ण थे, अश्वत्थामा थे। तो शकुनी को जब पता चला कि दुर्योधन को ज़्यादा साक्षात्कार हो रहा है, ये तो अभी फ्रस्ट्रेशन में सब त्याग करके अभी आत्मदहन करेगा, तो शकुनी तुरंत पहुँच जाता है, भाई आपको पता नहीं आपका जन्म क्यों है? तो दुर्योधन बोलता क्यों? तो आपको ये सारे त्रिलोक में राज्य करना है, आप तो इतने शक्तिशाली हैं इंद्रों को भी हरा सकते हैं, आप समझ नहीं पा रहे, ये तो समय की बात है, कुछ समय के लिए आप तो हार गए लेकिन अगली बार ऐसा नहीं हारेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग चीज बताते हैं, इस प्रकार दुर्योधन को वो जगाते हैं, फिर से वो सोचने लगे हाँ 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 मेरा जन्म तो राज्य करने के लिए हुआ है, क्यों मैं मर रहा हूँ, चलो वापिस चला जाता हूँ, फिर से वापिस चला जाता है। तो जो कुसंगत है, कहीं पर उसे साक्षात्कार हो रहा था, अच्छे सोच उसकी बढ़ रही थी, परंतु संग शकुनी के संगत के कारण फिर से वापस आता, राज्य करता है और फिर से जो है पांडव है उनको तकलीफ देने का जो है जीवन भर वो प्रयास करता है, जीवन में कभी वो सुधर नहीं पाता। तो इस प्रकार जब व्यक्ति को संगत ठीक न हो तो व्यक्ति अच्छा कभी सोचे भी तो वह अच्छा कार्य कर नहीं पाता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में आते हैं, जरासंध का उदाहरण आता है, कैकेयी का उदाहरण आता है, बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में दिए गए हैं जहाँ पर कुसंगत के कारण व्यक्ति कभी गलती से अच्छा कुछ करने का प्रयास भी करता है तो कर नहीं पाता है, क्योंकि संगत गलत है। अच्छे विचार आते हैं तो भी करने के पहले ही जो संगत है, दोस्त है, उसे गलत चीज़ पर लेके जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो संगत है वो अच्छी हो, जिससे हम अच्छा कार्य करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़े चित्रकार थे जिनका नाम माइकल एंजेलो था, तो अमेरिका में काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो एक बार वो यीशु ख्रिस्त के ऊपर फिल्म बनाना चाहते थे, तो उनको चित्र यीशु जी का चित्र वो ढूंढ लेते हैं, तो उससे वो ढूंढते हैं कि यीशु जी का बचपन से मेरे को शूटिंग करना है, तो ढूंढ रहे थे कौन सा लड़का इनके फेस को मैच हो जाएगा। तो ढूंढते ढूंढते एक विद्यार्थी को, मरसिलोना नाम का एक लड़का था, उसे ढूंढ लेते जिसका चेहरा काफ़ी मैच हो रहा था। तो उसे लेके वो यीशु का पूरा जो है वो सीरियल में चित्र निकालते और उसको अच्छे संभालते। और बाद में कुछ समय के बाद वो देखते उसी सीरियल का कुछ पार्ट आगे चला जाता है और यीशु जब बड़े हो जाते हैं तो यीशु को मारने वाला जो व्यक्ति था उसका भी, उन्हें एक व्यक्ति के बड़ा व्यक्ति चाहिए था जो उसकी एक्टिंग करेगा और उसका चित्र उनको निकालना था। और ढूंढते ढूंढते जाते हैं, फिर से वही लड़का जब बड़ा हुआ तो उसी को वो चुन लेते हैं और उसका चेहरा काफ़ी मैच होता था। तो ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता कि यही लड़का है जिसने यीशु के लिए मुझे पिक्चर फोटो निकालने के लिए पोज किया था, और यही लड़का है जो यीशु को मारने के लिए आया, उस अकराल विकराल व्यक्ति की तरह बन गया, क्योंकि उसका बाहर जाके संगत इतनी बुरी हो गई, जो सुंदर यीशु का चेहरा था वो बदल के इस असुर के रूप में बन गया क्योंकि उसकी संगत जो है गलत होगी। तो उसका चित्र निकालते समय उसे याद आया कि भाई पहले मैंने यीशु का निकाला था, यही बच्चा था, अभी बड़ा हो गया तो इतना आसुरी वृत्ति का बन गया क्योंकि संगत जो है उसकी गलत हो गई थी। तो इस प्रकार संगत के कारण व्यक्ति किसी भी स्तर पर जो है जा सकता है। तो हमें साधु संघ के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं 2-3 वचन और सुनाऊंगा जिसमें साधु संघ का क्या लाभ होता है उसके बारे में कथा आती है। तो चैतन्य चरितामृत करके हमारी परंपरा में एक सुंदर शास्त्र है जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बोलते हैं कि साधु संघ सर्व शास्त्र कोई लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि होए। कि साधु का संघ सारे शास्त्रों का कहना है कि केवल लव मात्र कुछ क्षण जो है साधु का संग करने से सर्व सिद्धि है, सारी सिद्धि जो हमें प्राप्त होती है। तो एक बार कथा आती है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं एक चोर जो है कभी कभार कुछ संतों को मिलता है, सोचता है चलो इनके साथ तीर्थ यात्रा कर लेता हूँ। तो तीर्थ यात्रा करने उनके साथ चला जाता है। तो रात्रि का समय हो जाता है, संतों के साथ में है और उसकी आदतों के कारण सो नहीं पाता है क्योंकि रोज चोरी जो है डकैती है रात भर करता था। पहली बार संतों के संग में गया, सारे संत सो गए आराम से, कुछ है तो नहीं उनके पास चोरी होगा। यह बेचारा जाग रहा है रात भर क्योंकि आदत है, कभी सोने की आदत ही नहीं थी, रात को ही चोरी करता था। तो अभी जैसे जाग रहा था नींद आ नहीं रही थी तो अचानक उसकी पुरानी यादें जग गई कि रोज इतनी चोरी की, इतने संत हैं, इतने बैग पड़े, सब आराम से खराटे मार रहे, चलो कुछ काम आज भी कर लेते। तो वो रात भर सबके बैग जो है निकाल के उनके कपड़े निकाल रहा था, इधर का उधर उधर का उधर करते करते जाग रहा था, सो नहीं पाया और जिस उसका समय हो गया आराम से जाके सो गया बाद में। तो सारे संत जो है उठ गए, देखे अरे मेरा ये सामान नहीं, मेरा वो सामान नहीं, चिल्लम चिल्ली चल रहा था, आवाज़ चल रहा था, ढूंढने लगे तो पता चला कुछ नहीं, इसका सामान उसके बैग में गया, उसका सामान इसके बैग में, सब कुछ उधर ही मिल गया और शांति से बैठ गए। बाद में बोले अरे क्या होगा, ये तो कोई नया व्यक्ति आया था आज साथ में, आराम से सोया, इसने कुछ गड़बड़ किया तो सब उठाते, क्या हुआ अभी तक सोया है, हमारा ये सब सामान ऐसे ऐसे कौन किया है सब। वो बड़ा ईमानदारी से बोलता है मैंने किया। बोले क्यों? बोले पहले चोरी करता था, रोज चोरी डकाती रोज का काम था, रात को जब सो नहीं पाया तो आदत थी चोरी करना डकैती करना, बस एक दिन आपके संग में रहा तो लगा कि गलत काम है लेकिन स्वभाव को नहीं छोड़ पाया, तो कपड़े तो निकाले लेकिन लेके नहीं गए, अंदर ही दूसरे के बैग में डाल दिया, उसके भी उठाए इसके बैग में डाल दिया, खाली रात भर वही कर रहा था, चोरी करके नहीं लेके गया। तो स्वभाव था तो जग रहा था तो कुछ तो किया लेकिन संगत के कारण बदल गया था, चोरी करके लेके नहीं गया, आदत के कारण बस कपड़ों को उठा के इधर से उधर उधर से उधर रात भर वही कर रहा था। तो इस प्रकार केवल एक दिन का जो संग उसे प्राप्त हुआ था उसके कारण उसमें इतना बदलाव आ गया कि वह चोरी नहीं कर पाया, बट स्वभाव के कारण कुछ तो कर दिया रात को उसने। तो इसी प्रकार एक कथा शास्त्र में आती है, एक बार श्री नारद जी जो है भगवान विष्णु के पास जाते और पूछते हैं कि भगवान ही आपका ये सुंदर जो श्लोक है साधु संग सर्व शास्त्र कोई लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, इसका अर्थ क्या होता है? तो विष्णु भगवान बताते हैं नारद जी आप अभी जाइए पृथ्वी पर, अभी अभी एक मछली जो है वो जन्म लिए उसे पूछ लीजिए कि इसका अर्थ क्या है। तो नारद मुनि भगवान का शब्द वचन है तो तुरंत चले जाते हैं, एक तालाब था उसके बाजू में खड़ा रहते देखते और एक मछली जो छोटी मछली को जन्म देती है और उसे पूछ लेते भाई मेरे भगवान ने भेजा है कि ये साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो का अर्थ क्या है। तो मछली जो बच्ची अभी भी आई थी ऐसे नारद मुनि को देखती है और आंखें बंद कर देती है और अपनी जान छोड़ देती है। नारद मुनि डर जाते भाई ये क्या हो गया, भाई तो उसे कुछ अच्छा कुछ पूछने आया था, भगवान की आज्ञा थी, ये तो जान चली गई। जाते हैं भगवान को बोलते हैं कि ये कैसा अर्थ हुआ, ये क्या बता रहे हैं आप, वो मछली को प्रश्न तो पूछा उसने तो जान निकल गई, लोग तो मारेंगे मुझे ऐसे। विष्णु बोलते आपको अर्थ मालूम चाहिए ना, तो बोले हाँ तो और एक सेवा कीजिए, आप जाओ और यही प्रश्न अभी जो अभी अभी एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है उसे पूछ लीजिए। तो नारद मुनि फिर से निकलते हैं अभी डरते हुए। पहले तो मछली थी, गाय का बछड़ा है, कोई देख लेगा तो मारेगा। अरे कैसा साधु है, हाँ बछड़े को भी मार दिया। तो गए, देखा कि गाय ने अभी भी सही में एक बछड़े को जन्म दिया है। इधर उधर देखा कोई है नहीं, तो जाते हैं बछड़े के सामने खड़ा रहते। बछड़ा जस्ट अपने पैरों पे खड़ा होके दूध पीने का प्रयास कर रहा था, और जैसे जस्ट उठा था अभी अभी, और नारद मुनि पूछ लेते, भाई भगवान नारायण ने भेजा है ये साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, इस श्लोक का अर्थ क्या होता है? बछड़ा है अभी दूध भी नहीं पिया है, उसने नारद मुनि को ऐसे देखा, नारद मुनि डर गए, पहला अनुभव था उनको। फिर से सामने अपना सर किया, टेढ़ा किया, पैर फिसल गए, गिर गए, जान चली गई। नारद मुनि अभी डर जाते, अरे भाई वो तो छोटी मछली थी, अभी तो ये गाय का बछड़ा है, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा मेरे को, तो भगवान मेरे से क्या करवा रहे। तो भागते भागते जाते विष्णु को बोलते, ये क्या करवा रहे मेरे से आप? एक प्रश्न पूछा है, श्लोक जो आपने ही लिखा है, आपके निर्माण से हुआ है, उसका अर्थ समझाने के लिए दो जीवों को मेरे मारना पड़ा, या दो जाने चली गई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? विष्णु बोलते, कोई बात नहीं, अंतिम बार प्रयास करो। नारद मुनि बोलते, इस बार जान नहीं जानी चाहिए। नहीं नहीं बोले, अंतिम बार एक प्रयास करो। तो बोलते, अभी अभी एक माँ जो है अपने बच्चों को जन्म दिए, उस बच्चों को जाके पूछो। नारद मुनि बोलते, अंतिम बार, अगर कुछ हो गया तो बाद में नहीं पूछूंगा। तो चले जाते हैं। अभी अभी एक माँ ने प्रसूति में बच्चों को जन्म दिया था, इतने डरते हुए जाते जाते, और वही अनुभव उस बच्चे को जब पूछते हैं, जैसे आंखें उसने खोली, माँ का दूध पीने वाला है, और नारद मुनि बोलते हैं कि भाई ये साधु संग शब्द का अर्थ क्या होता है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, और वो भी बच्चा नारद मुनि की तरह इसे आ करके देखता है, आंखें बंद करता है, अपनी मान को डाल देता और चला जाता है। अभी नारद मुनि डर जाते, भागते हुए जाते और भगवान विष्णु को बोलते, ये कैसा सेवा आप दे रहे हैं, मुझे अर्थ बताओ, तीन जाने चली गई। तो विष्णु बोलते हैं कि आपने अभी तक जो देखा है वही तो मैं अनुभव के रूप में आपको दिखाना चाहता हूं कि साधु संघ का अर्थ क्या होता है, कि लव मात्र साधु संघ से कैसे सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। तो आप देखो पीछे, नारद मुनि पीछे देखते हैं, तो वो बच्चा जिसने अभी अभी जान छोड़ी थी, वो चतुर्भुज रूप प्राप्त कर गरुड़ के ऊपर बैठ के उधर वैकुंठ में आ पहुंचा था। और फिर भगवान विष्णु से समझाते हैं कि जब आपके दर्शन हुए उस मछली को, तो मछली की योनि से केवल आपके दर्शन मात्र से वो सीधा गाय की योनि में उसका जो है परिवर्तन होता है। तो उतरा जो लव मात्र संग था, तो मछली एक गाय के रूप में जन्म लेती है, और गाय का जो बछड़ा है जब आपका क्षण भर के लिए संग पाता है, आपका दर्शन लेता है, उसकी मृत्यु होती है, तो तुरंत उसे मनुष्य देह प्राप्त होता है। और जब वो मनुष्य के रूप में बच्चे के रूप में आया था, आपका दर्शन पाता है, उतने संघ से वो वैकुंठ तक पहुंच गया। तो कितना साधु संघ का महत्व आप ही जान लो। तो नारद मुनि समझ जाते कि भगवान मुझे अर्थ भी समझाए और मैं साधु हो ये भी समझाए, दोनों एक साथ हो गया, और साधु संघ का क्या महत्व है वो अच्छे तरह से वो समझ गए। तो इस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि जो संत है, साधु है, उनका जितना हम संग करेंगे उतना जीवन में हमारे बदलाव जो है आ सकता है। और वास्तविक में साधु संग का अर्थ क्या है? क्या केवल उनके साथ में रहना साधु संग है? नहीं, श्रील प्रभुपाद जी तो हमें बताते हैं कि जो खटमल है वो भी शरीर के सबके पास में बैठा रहता है, बट क्या करता है? खून पीता है, वो तो तकलीफ देता है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य को समझाते, तो आपसे ज्यादा तो खटमल मेरे पास में, तो क्या वो मेरे संग ले रहे हैं? नहीं, केवल साथ में रहना यानी संग नहीं होता है। तो साधु संग का अर्थ है कि साधु के द्वारा जो वचन है उसे हम स्वीकारें, सुने, अपने जीवन में उसे उतारें, उसका पालन करें, उसे कहते हैं साधु संग। एक बार हमारे कई भक्त कुंभ मेला में गए थे, तो एक बार वो ऐसे सुबह, क्योंकि कुंभ मेला तो सारे संतों का मेला है, तो कुछ भक्त सुबह सुबह उठ के माला करते करते सोचे कि चलो और भी बहुत सारे यहाँ पे जो टेंट है, संत लोग आए, अनेक संप्रदाय आए, तो जाके देखने को कि क्या कर रहे हैं लोग। तो तो एक टेंट में वो सुबह सुबह माला करते करते घुस गए तो उन्होंने देखा एक भगवे कपड़े पहन के एक साधु वहाँ पर उसके आजू बाजू में 10-15 लोग खड़े एकदम जमा हुए, तो उन्हें अच्छा लगा सुबह सुबह एक संत की वाणी सुनने के लिए इतने लोग खड़े हैं, तो प्रसन्न हो गए। थोड़ा आगे जाते तो उन्हें पता चलता कि वास्तविक रूप में कुछ संग लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, या लोग कुछ सुनने के लिए उस संत के बाजू में खड़े नहीं थे। तो संत जो दाढ़ी वीढ़ी बढ़ा के हाथ में अच्छा खासा चिलिम था और गांजा फूंक रहा था, और सब बाजू में खड़े थे कि एक एक को बारी में बारी बारी से उसको गांजा भी फूंकना था, इसलिए सब साथ में खड़े थे और वेट कर रहे थे कब मेरा बारी आएगा। तो भक्त लोग बोले कि भाई इसको तो साधु संग नहीं कहेंगे, साथ में बैठ के चिलाम या गांजा फूंकने के लिए साधु संग नहीं कहते। तो साधु संग का अर्थ है कि संत के द्वारा दिए गए शास्त्रों के वचन सुनकर हम भगवान के प्रति हमारा जो समर्पण है, हमारे चेतना जो है उनके ऊपर ध्यान करने का प्रयास करें, उनका अधिक से अधिक जो है हम ध्यान करने के लिए या चिंतन करने के लिए हमारे चेतना को सुधारें। तो इस व्यवहार को जो है साधु संग हम कहते हैं। तो अंत में एक कथा बोलकर कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद एक ऐसे साधु थे जिनके संग में आकर पूरे विश्व में जो है परिवर्तन आ गया। 1972 की कथा जब हम सुनते हैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में, क्रॉस मैदान का कार्यक्रम जहां पर 7 दिन की यह भागवत कथा क्रॉस मैदान में चलाई गई, और रोज जो है 20,000, 25,000, 30,000 की संख्या में ऐसे लोग बढ़ते बढ़ते अंतिम दिन तक 30,000 लोग आकर श्रील प्रभुपाद के कथा वचनों को सुन रहे थे। तो इसे हम वास्तविक में साधु संघ कहते हैं, क्योंकि उस 7 दिन की कथा के बाद जो है इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया, विशेष करके हमारे इस्कॉन के आज के मुख्य दो मुख्य सन्यासी भक्त जो शुद्ध भक्त कार्य पूरे विश्व भर में इस्कॉन संस्था का प्रचार कर रहे हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ये महान संत जो है उस 7 दिन की कथा सुनकर इस्कॉन में आए और पूरा जीवन उनका परिवर्तन हुआ, तो उसे कहते हैं साधु संग। केवल 7 दिन कथा सुनी, उसके बाद उस साधु की इतनी आसक्ति हुई तो उन्होंने उस साधु को छोड़ा नहीं, सारा जीवन जो है श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित किया। और आज भी इस्कॉन संस्था में इतनी बड़ी मात्रा में ये प्रचार कार्य कर रहे हैं, हरिनाम बांट रहे हैं, कृष्ण कथा बांट रहे हैं, और हजारों लोगों का जीवन जो है परिवर्तित कर रहे हैं। तो यह श्रील प्रभुपाद जी की महिमा है जिन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की, सारे विश्व भर में अनेक मंदिर बनाए, अनेक इस प्रकार के कृषि क्षेत्र बनाए, गुरुकुल बनाए, जहाँ पर लोगों को साधु संघ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो, साधु का संग करें, उनसे सुने, भागवत का वचन सुने, हरिनाम सुने, कीर्तन सुने, और अपने जीवन में कुछ ना कुछ वहाँ पर सुनकर जो अपने घर आकर वो परिवर्तन कर सके और अपने जीवन में वो सारे बदलाव ला सके। तो इस गोवर्धन इको विलेज का वही हमारा उद्दिष्ट है। श्रील प्रभुपाद जी उनके सारे शिष्य इतना कष्ट करके विश्व भर में इस संस्था का प्रचार कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों को अधिक से अधिक कृष्ण कथा सुनने का, श्रीमद् भागवतम सुनने का अवसर प्राप्त हो और अपने जीवन में वो बदलाव ला सके। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद देते हैं, आज आप इस रविवार यह सत्संग में आए हैं, 1 घंटे के लिए यहाँ पर सुंदर कथा आपने सुना, और इसके बाद भगवान का श्री राधा वृंदावन बिहारी का जो है यहाँ पर दर्शन खुलेगा 12 बजे, और उसके तत्पश्चात आरती होगा, आरती के बाद हम तुरंत जो है भगवान का महाप्रसाद प्राप्त करने के लिए जाएंगे। हरे कृष्णा। तो कथा के बाद कुछ प्रश्न है तो हम सुनेंगे, प्रथमतः यहाँ पे दर्शन खुलेगा, भगवान का हम दर्शन लेंगे, आरती होगा, उसके बाद प्रसाद के लिए चले जाएंगे।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान तरुणिताय प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने साधु संघ का महत्व कैसा है, कैसे उन्होंने अलग अलग शास्त्रों के उदाहरण से हमें बताया कि साधु संघ कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो अभी तो इस आज के रविवार सत्संग कार्यक्रम में आप सब यहाँ पे आए, जब हमारा क्लास प्रवचन शुरुआत हुई थी तो कुछ गिने चुने लोग यहाँ पे बैठे थे, लेकिन अभी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे भक्त बैठे हैं, तो आप सभी का धन्यवाद, और विशेष करके जो पहली बार यहाँ पे आए हैं उनका विशेष धन्यवाद। तो आपके मन में अगर कोई प्रश्न है इस इस्कॉन संस्था के बारे में और इस मंदिर की गतिविधियों के बारे में, तो यहाँ पे हमारे स्वागत कक्ष के कुछ भक्त यहाँ पे खड़े रहेंगे, और यहाँ पे 12:30 बजे महाआरती के बाद आपके जो भी प्रश्न हैं उसके उत्तर दिए जाएंगे। तो हम श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका आज का जो दिन है वो आपके उज्जवल कृष्ण भावनामय जीवन का शुभारंभ बने, और ऐसे ही हर रविवार को आप यहाँ पे आके हमें प्रोत्साहित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पे 12:30 बजे महाआरती होगा, 12 से 12:30, और फिर 12:30 बजे आपको सबको कूपन मिला है प्रसाद का, तो ललिता भवन हॉल है वहां पे सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।
तो सब लोग खड़े हो जाएंगे यहाँ पे
मंदिर के सामने, खड़े रहेंगे और भगवान का दर्शन के लिए
वहाँ सब सामने आ जाइए, यहाँ पे खड़े हो गए।
यशोमती नंदन लोकर हरिणाम चालो करा।